SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
ऑस्ट्रेलिया में संशोधित पीने के पानी के दिशा निर्देश सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए गए हैं। इस अपडेट में नल के पानी में तथाकथित हमेशा के लिए पाए जा रहे रसायनों PFAS, PFAS, इसके स्वीकार्य स्तर पर अधिक कड़े मानक शामिल हैं जो नवीनतम वैज्ञानिक साक्ष्य और मानव स्वास्थ्य संबंधित विचारों पर अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शन यानी गाइडेंस पर आधारित हैं। फायर फाइटिंग फोम से लेकर घरेलू सामान जैसे कि नॉनस्टिक पैन और स्टेन रेजिस्टेंट कपड़ों तक PFAS, PFAS रसायन का 1950 के दशक से व्यापक रूप से उपयोग किया जाता रहा है। अनुसंधान और परीक्षण ने अब दिखाया है कि 14,000 रसायनों का समूह जिन्हें विघटित होने में लंबा समय लगता है पर्यावरण में पाया जाता है और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में एक स्पष्ट समझ भी अब उभर रही है। डेनिस ओकरल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में सिविल और पर्यावरण इंजीनियर के प्रोफेसर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में भूजल और सतही जलों में PFAS के स्तर पर एक अध्ययन का सहलेखन किया है जो इस साल की शुरुआत में नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित हुआ था।
Well, we looked at international groundwater and surface waters, just natural waters that could be used, taken through a treatment plant, and then we could drink the water after that. And we found that PFAS was pervasive, you know, throughout the world in our ground and surface waters at concentrations higher than would be deemed acceptable in many international jurisdictions.
अब रसायनों के साथ जीवन भर संपर्क में रहने से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों पर इस वर्तमान वैज्ञानिक साक्ष्य को देखते हुए पीने के पानी में PFAS के स्वीकार्य स्तरों पर ऑस्ट्रेलिया के दिशा निर्देशों को संशोधित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी द नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल का कहना है कि उसने विदेशों से नवीनतम PFAS मार्गदर्शन पर विचार किया है और इसमें अमरीकी पर्यावरण संरक्षक एजेंसी, स्वास्थ्य कैनेडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण शामिल हैं। काउंसिल के CEO प्रोफेसर स्टीव वेस्लिंग का कहना है कि मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अधिक सख्त रेगुलेशन प्रस्तावित किए जा रहे हैं। नई सीमाएं चार प्रकार के PFAS को प्रभावित करती हैं जिन्हें नैनोग्राम प्रति लीटर में मापा जाता है।
And this is based on human health considerations, and the concentration of the following PFAS in drinking water should not be exceeded above these levels. You need to be drinking above these levels for your entire life to have what we regard at the moment as toxic effects. That PFOA we've reduced from 560 down to 200. PFOS, which we had previously joined together with PFH excess at a level of 70, we've reduced down to 4. And PFH excess, we've reduced down to 30. And PFSBS, we didn't have a level before, and we now have a level of 1,000.
दिसंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर एजेंसी द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने PFOA नामक एक प्रकार के PFAS को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया। प्रोफेसर वेस्लिंग का कहना है कि अलग अलग तरीकों और कानूनी संदर्भों के आधार पर दृष्टिकोण पर क्षेत्रीय मतभेद होंगे। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों ने पाया कि स्वास्थ्य प्रभावों पर गुणवत्ता के अधिकांश साक्ष्य पशु अध्ययनों पर आधारित हैं। पिछले महीने यानी 26 सितंबर को न्यू साउथ वेल्स संसदीय जांच की स्थापना की गई थी, जब कच्चे और अनट्रीटेड पानी पर स्वतंत्र परीक्षण किया गया। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड की रिपोर्ट में ब्लू माउंटेन के डैम सहित PFAS संदूषण के हॉटस्पॉट दिखाए गए थे। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड द्वारा कमीशन किए गए उस परीक्षण में एडम्स क्रीक में दो प्रकार के PFAS का उच्च स्तर पाया गया, जो मेडो डैम को पानी देता है। 3.7 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की कंसंट्रेशन 0.07 माइक्रोग्राम के वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई दिशा निर्देशों से 50 गुना अधिक थी। एहतियात के तौर पर वाटर NSW ने 25 अगस्त को मेडो डैम और ग्रीव्स क्रीक डैम को पीने के पानी की आपूर्ति से काट दिया, क्योंकि सरकारी परीक्षणों में भी PFAS का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया था। न्यू साउथ वेल्स वाटर मिनिस्टर रॉस जैक्सन ने निवासियों को आश्वस्त करते हुए एक बयान जारी किया कि हाल ही में और चल रहे परीक्षण हो रहे हैं। बयान में कहा गया कि सबसे हालिया परीक्षणों से पता चला है कि सिडनी वाटर और हंटर वाटर द्वारा वर्तमान में आपूर्ति किया जाने वाला सारा पानी मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई पेयजल दिशा निर्देशों का अनुपालन करता है और पीने के लिए सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ब्लू माउंटेन क्षेत्र में PFAS के स्तर को कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। उन स्थानों को अलग किया जा रहा है जहां PFAS का पता चला है और वैकल्पिक बांध जो कि ओबरॉन डैम है उससे अधिक पानी का उपयोग किया जा रहा है। प्रोफेसर टोनी लॉलर ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य और वृद्ध देखभाल विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। उनका कहना है कि फेडरल सरकार ने PFAS और ऑस्ट्रेलियाई समुदायों में मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव पर शोध शुरू किया है।
In 2016, the department commissioned the Australian National University to conduct an epidemiological study examining the potential health effects of Australian communities, namely Katherine in the Northern Territory, Oakey in Queensland, and Williamtown in New South Wales. I do note that people living in those three PFAS investigation areas were more likely to have experienced psychological distress than those who lived in comparable communities. And the government takes the health and well-being of the Australian public seriously, including mental health. And is committed to building a strong mental health system for Australia.
Draft water guidelines पर प्रस्तुतियां यानी submissions अगले महीने 22 नवंबर तक एकत्र की जाएंगे। अंतिम दिशा निर्देश अगले साल अप्रैल तक प्रकाशित किए जाने हैं। SBS News के लिए बीबा कुआन की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया अनीता बरार ने।